नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1250 के पार, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास को न्यायालय ने रोक दिया है। अमेरिका के जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा ये तर्क दिए जाने के बाद अस्थायी राहत जारी की कि नया आदेश अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करता है। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय 30 जून को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के तुरंत बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप का प्रारंभिक 2025 का कार्यकारी आदेश 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो प्रवासी माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्थायी नागरिकता की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त को एक संशोधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जो विशेष रूप से अमेरिका में पर्यटन के दौरान जन्मे बच्चों को लक्षित करता है और विदेशी सरकारी कर्मचारियों, प्रवासन में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को नागरिकता से वंचित करता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। बचाव कर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
नेपाल में भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल की भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल की प्रधानमंत्री बालिंद्र शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक भी लापता है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गो से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में अचानक आई इस बाढ़ से चीनी भूभाग मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। पनबिजली परियोजना स्थलों पर बचाव अभियानों में भारत सहित चीन और दक्षिण कोरिया ने भी विशेषज्ञ दल भेजे हैं। इस बीच भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को JSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। श्री नारायण ने कहा कि यह अभियान भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता को और मजबूत करेगा और इससे पृथ्वी अवलोकन सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों की 18वीं बैठक के दूसरे दिन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि बौद्धिक संपदा ढांचा तकनीकी लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों ने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आईपी ब्रिक्स समूह में निरंतर सहयोग के लिए समन्वय तंत्र और प्रगति की समय समय पर समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उत्तरी कैरोलिना में G20 की बैठक से अलग अमरीकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन श्वार्ट्ज़ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वरिष्ठ अधिकारी के साथ अलग अलग बैठकें की। श्री मल्होत्रा ने ऐश्वर्य में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया, जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वरिष्ठ आर्थिक नेतृत्व निर्माता शामिल हुए। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14-28 के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5-9 तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,250 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।